Hare Krishna. Radha Chandra. Hindi mein padho kya? Hindi mein padho kya? Hare Krishna. What's your nice swagat? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. जैसे आप जानते हो एक क्लास है दो भाग देंगे मैं थोड़ी देर के लिए बोलूंगा कि मैं पूजा करना अभिषेक से पहले और फिर प्रपोजल महाराज देंगे इस प्रवचन ठीक है श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 8 टेक्स्ट 12 श्री गागवाच आयाम हे रोहिणी Putro Ramayam Surdo Gurne Akhyasyate Rama Ishi Bradikya Bahalam Vedhu Yadunam Aprasad Bhava Sankarsham Vishan Yapi Shri Garga Vacha Amiroini Putro Ramayan Surdogane Akhyasyate Rama iti Vadekyad Padam Vidhu Yadunam Apsar Bhava Sankarsanam Mushyantyapi Ayami Rohini Putro Ramayan Surdogane Akhyasyate Rama iti Vadekyad Padam Vidhu Yadunam Apsar Bhava Sankarsanam Mushyantyapi
यदुवंश का
आप्रथ
भावा कि आप मस्जिद में बैठा है अभी भी अपने देवी गुणों से अपने संबंधियों तथा मित्रों को सभी तरह का सुख प्रदान करेगा। अतः यह राम कहलाएगा और असाधारण शारीरिक बल का प्रदर्शन करने के कारण यह बलराम भी कहलाएगा। क्योंकि यह दो परिवारों वसुदेव तथा नंद महाराज के परिवारों को जोड़ने वाला है, अतः यह नाम संकर्षण भी कहलाएगा। आप सभी हो रहे हैं यह रोटी अपने देवी गुणों से अपने संबंधी तथा मित्रों को सभी तरह का सुख प्रदान करेगा। अतः यह राम कहलाएगा और असाधारण शारीरिक बल का प्रदर्शन करने के कारण यह बलराम भी कहलाएगा। चूंकि है दो परिवारों वसुदेव तथा नंद महाराज के परिवारों को जोड़ने वाला है, अतः यह संकर्षण भी कहलाएगा। बंदे पशु पर देवकी को चुके कि उन्हें देवकी के कर्म से रोहिणी के कर्म में स्थान कर दिया गया। क्योंकि यह दो परिवारों यदुवंश तथा आनंद वंश को जोड़ने वाला है, जिसमें से एक क्षत्रिय वंश है और दूसरा वैश्य वंश। दोनों ही परिवारों के वंशज एक थे। अंतर इतना ही था, नंद वैश्य पत्नी से उत्पन्न हुए थे और वसुदेव क्षत्रिय पत्नी से। बाद में नंद महाराज ने वैश्य कन्या से विवाह किया और वसुदेव ने क्षत्रिय कन्या से। इस तरह एक ही पिता से दोनों उत्पन्न थे, किंतु वे क्षत्रिय तथा वैश्य परिवारों में पड़ गए। अब बलदेव ने उन दोनों को जोड़ दिया, इसलिए वे संकर्षण कहलाते हैं।
ठीक है, ऐसे आए शिवा, ठीक है, ऐसे ऐसे ठीक है। ॐ ज्ञातिमिहन्तस्य ज्ञानञ्जनाशाख्य चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोहरस्तं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदामयं दधाति स्वापदनिगं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमल श्रीगुरुर्वैष्णवंश्च श्रीरूपं सगजतं सहगणरघुनाथनमितं तं सुदेवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषमानु सूति देवी प्रणमामि हरिषे वाचा तल्पतरभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च परितानां पवनेभ्यो विजनेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। से मैंने कहा था मैं थोड़ी देर के लिए बोलूँगा, फिर प्रबोधानंद महाराज आगे बोलेंगे। श्री गाय का उवाचा अयम रोहिणी पुत्रो मयन सूर्यो बोले क्या सते राम ऐसी बाला देख के आज बलम विदो याद नाम अपृतक भावत संकर्षण उशांति। जैसे आप जानते हो आज बहुत ही शुभ दिन है। क्या है? बलराम जयंती। वो बलराम जी कौन है? भगवान के बड़े भाई। जब पर भगवान पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तो उनके सनातन साथी भी साथ में प्रकट होते हैं। जैसे कि भगवान ने वासुदेव और देवकी को अपने माता पिता के रूप में स्वीकार किया, वासुदेव और देवकी ने भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत गहरी तपस्या की थी। आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। 12,000 देवताओं के वर्षों के लिए कुछ खाया नहीं, केवल जो पत्ते पेड़ों से गिरते हैं वो थी उनकी खुराक। अगर आपको ये खुराक दी जाए तो आप ज़्यादा देर नहीं टिकोगे। तो 12,000 देवताओं के वर्षों के लिए, और हमारे पृथ्वी के 6 महीने उनके 12 घंटे के बराबर है। और निरंतर उनका चिंतन एक ही विषय पर था, हमें परम भगवान प्राप्त हों पुत्र के रूप में। तो बलराम जी भी भगवान के भाई हैं। जब भगवान प्रकट होते हैं वो भी प्रकट होते हैं। कई बार प्रकट होते हैं बड़े भाई के रूप में, कई बार छोटे भाई, और कई और प्रकट होते हैं उनके साथ। तो वासुदेव देवकी से दोनों के पिता और पिता और माता भगवत विदर्शन में पढ़ते हो, वासुदेव देवकी के जब विवाह हुआ तो उनका देवकी का भाई कंस अपनी बहन को अपने घर छोड़ने जा रहा था। देवकी का पिता देवका बड़ा स्नेह था उसकी बेटी के प्रति, तो उन्होंने शादी में इतना बड़ा दहेज दिया, हजारों रथ सोने के बने हुए और सेवा करने के लिए गोपियाँ, सेवा करने के लिए और दासी और सोने के चैरियट इत्यादि। और कब उसने कहा मैं अपनी बहन को घर में छोड़ के आता हूँ। तो वैसे उसका भाव अच्छा था, भाव ऐसा शादी हुई है बहन की उसके घर छोड़ा है, कोई रिवाज भी है ऐसा। तो रास्ते में एक दिव्य वाणी द्वारा उन्हें सूचना मिली क्या हे मूर्ख, तुम तुम्हारी बहन को ले जा रहे हो उसके घर, और तुम जानते नहीं कि इसका 8वां पुत्र तुम्हारे मृत्यु का कारण, इसका 8वां बेटा बच्चा तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। कंस दुष्पुत्र के थे, जब उन्होंने सुना कि उनकी जान को खतरा है उस देवकी के राज से जिसको बड़े प्राण प्रेम से छोड़ने जा रहे हैं, कंस की बुद्धि एकदम नष्ट हो गई। तलवार निकाली और देवकी को मारने को तुरंत तैयार हो गए। तो भगवत में कहा गया है जान बचाने के लिए अगर किसी को चापलूसी भी करना पड़े तो ठीक है। तो वासुदेव ने देखा कि देवकी की जान खतरे में थी, वासुदेव ने कहा घबराते क्यों हो, जैसे बेटा बच्चा पैदा होगा मैं बच्चे को तुम्हारे पास ले आऊँगी और अगर तुम्हें लगे इससे खतरा है तो उसको जो जो करना कर लेना तुम्हारी मर्जी। तो वह कंस ने कहा ठीक है, वो कहने बहुत से को पता था कंस की बुद्धि का कोई भरोसा नहीं। तो वहाँ से फिर नारद मुनि वहाँ पहुँच गए। नारद मुनि ने कहा कंस ये यादव खानदान के सारे सदस्य जन्म ले लिया है। तो नारद मुनि चाहते थे कि कंस और अपराध करे और जिसके कारण भगवान जल्दी प्रकट हो। तो जब कंस को ये सूचना मिली तो कंस ने कहा अब तक किसी को नहीं जिंदा छोड़ना। तो जैसे देवकी के पुत्र प्रकट होते थे तुरंत ही उनको उनका वध हो जाता था। ये जो छह बेटे मारे गए पहले उन्हें मानी जी के बच्चे बुलाते हैं तो उनके द्वारा ये संदेश मिलता है कि जब तक हम काम क्रोध लो मोह मद मत्सर्य को नहीं वश में करेंगे अब भगवान को नहीं समझ सकोगे। भगवद गीता के चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्म से किनारे भक्ति भारत धर्म से मैं अलग अलग समय में अवसारित होता हूँ इसलिए धर्म की स्थापना करी पाई चलाया साधु नाम विनिश्चित दुष्कृता धर्म संसदार्थ आया समय। मैं अलग अलग समय में प्रकट होता हूँ धर्म के नियमों का पालन करें। भगवान जो हैं बिल्कुल शुद्ध है और उन्हें समझने के लिए हमें हमारे हृदय को भी शुद्ध बनाना पड़ेगा। ये जो हम वैदिक भक्ति का पालन करते हैं जिसके कारण हम मंगल आश्रम में आते हैं क्लास में आते हैं क्लास सुनते हैं इन सब का उद्देश्य क्या है कि आपके अशुद्ध हृदय को शुद्ध बनाया जाए जिसके द्वारा परम भगवान को समझ सको। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य ये हैं शेष शत्रु आध्यात्मिक जीवन के। और आचार्य ने ये उपदेश दिया है कि अगर आप भगवान को समझना चाहते हो तो ये जो छह असुर थे जिनका वध हुआ था उसके द्वारा हमें ये संदेश मिल रहा है कि अगर भगवान को समझना चाहते हो ये जो अनर्थ हैं उनसे हमें बचना पड़ेगा। भगवद गीता के तीसरे अध्याय में अर्जुन ने पूछा क्या कारण है कि जानते हुए भी हम गलत काम करते हैं। हम जानते हैं इंद्र तृप्ति का कार्य हमें संतुष्ट नहीं करेगा जब भी हम जुड़ते हैं। और भगवान ने क्या कहा काम ऐसे क्रोध ऐसे आज गुरु से बोल बाबा भगवान ने कहा काम वासना के कारण। और आगे भगवान ने कहा आप इसे कहाँ प्राप्त कर सकते हो मन में बुद्धि में इंद्रियों में। आगे कहा कैसे आप इन्हें नष्ट कर सकते हो ज्ञान की तलवार से। तो छह बच्चों का तो वध हो गया। जब सातवीं प्रेगनेंसी थी तो भगवान ने योग माया शक्ति के द्वारा वो जो बच्चा था वो चला गया कहाँ देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में। बालराम जी जो हैं इनकी हमेशा एक ही इच्छा रहती है भाई की सेवा। और बालराम जी प्रकट हुए किस लिए भगवान की लीला को सफल बनाने के लिए। और भगवान बालराम जी तो ट्रांसफर हो गए थे रोहिणी के वूम में तो फिर परम भगवान प्रकट हुए। दूसरे शब्द में बालराम ने जो मैल थे कान पर लोग मोमन से उसको साफ कर दिया, फिर परम भगवान प्रकट हुए। तो बलराम जी जो हैं पहले गुरु भी हैं, उनके अनेक नाम हैं, जैसे आज के श्लोक में आपने पढ़ा, वह एक नाम है रोहिणी नंदन, जो क्योंकि वो रोहिणी माता के गर्भ से जन्म लिया था, क्योंकि उन्होंने रोहिणी माता को माता के रूप में स्वीकार किया था। और जो व्यक्ति भगवान राम और कृष्ण भगवान की शरण ले वो अपना जीवन शांति से निभा सकते हैं। तो बलराम जी के अनेक नाम हैं, और भक्त जो हैं बलराम जी की उपासना करते हैं किस लिए, अपनी भौतिक कमजोरियों को नष्ट करने के लिए। हम बलराम जी के द्वारा शक्ति प्राप्त होती है, भौतिक शक्ति नहीं। आप पहलवान बनना चाहते हो तो बलराम जी के बताओ आ सकते हो, भगवान कहते हैं चार परिस्थितियों में लोग में बसाते हैं, पर हम बलराम जी के शरण में आते हैं, उनसे शिक्षा आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए। तो बलराम जी हमेशा प्रकट होते हैं जब भगवान प्रकट होते हैं, और बलराम जी जो हैं उनके द्वारा हम ये समझते हैं जो गुरु है वो उनके प्रतिनिधि हैं। बलराम जी के हाथ में क्या रहता है, हल और गदा। हल से क्या करते हैं, हल से जो खेती को साफ करना है साफ करते हो, तो फिर अन्न पैदा होता है। तो उसी प्रकार गुरु जो है बलराम जी का प्रतिनिधि, वो आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा जो हृदय की मैल है उसे दूर करता है, और अगर हम उसका लाभ उठाएं। और गुरु क्या करता है, अपनी परंपरा की शिक्षा के द्वारा हृदय को साफ करता है। तो बलराम जी लक्ष्मण के रूप में प्रकट हुए थे जब भगवान राम पृथ्वी पर आए थे। आप पढ़ते हो कि जब लक्ष्मण के रूप में प्रकट हुए थे बलराम जी, तो उनके मन में एक ही भाव था 24 घंटे। क्या था वो भाव, राम की सेवा, राम की सेवा। उनके पैदाइशी से उनके मन में एक ही भाव था, राम की सेवा। और जब रामचंद्र जी का विवाह हुआ, सीता ने देखा उनके लिए कोई काम है ही नहीं, जो काम वो करने जाती है लक्ष्मण ने पहले ही कर दिया होता है। और लक्ष्मण जी जब वो देखते थे सीता कोई सेवा कर रही है, उन्हें भी यार पसंद नहीं आता था, वो कहते ये सेवा तो मुझे करना चाहिए। तो दोनों गए भगवान राम जी के पास, क्या किया जाए, सीता कैसी है, उनकी शिकायत थी, जैसे मेरा विवाह हुआ है मुझे कोई सेवा है ही नहीं, मेरे जो सेवा मैं करने जाती हूँ लक्ष्मण पहले वहाँ पहुँच जाता है। लक्ष्मण ने कहा मैंने तो जन्म से ही निश्चय कर लिया था कि मैंने राम की सेवा करनी है। तो राम जी के सामने समस्या थी किसको किसका सहयोग दे। राम जी ने कहा चलो गुरु जी के पास। तो गुरु जी ने क्या कहा, गुरु जी ने कहा जो उससे राम जी के घर का कार्य है वो सीता करें, वो जो राम जी बाहर जाए युद्ध करने शासन करने फिर राम उनके साथ जाए। तो लक्ष्मण खुश नहीं था, पर ये उदाहरण है कि जब कोई समस्या आती है तो गुरु की शिक्षा लाभ उठाना चाहे। तो लक्ष्मण जी के रूप में गए एक ही भाव था भगवान की सेवा। तो यही लक्ष्मण फिर प्रकट हुए बलराम जी के रूप में, और यहाँ थे वो बड़े भाई, बड़े भाई थे। और यही बलराम फिर प्रकट हुए थे किस रूप में, नित्यानंद के रूप में। तो भगवान प्रकट होते हैं धर्म की स्थापना के लिए। और बलराम जी का एक और नाम है दाऊ जी, बड़े भाई, उनका क्या भाव था, केवल भाई की सेवा, यही था उनके मन में। उनकी बचपन की लीला तो लगभग दो भाइयों ने एक साथ ही की थी। और अब देखते हो कि जो असुरों का वध किया भगवान के भाई ने, उसका असली संदेश क्या है। भक्ति विनोद ठाकुर ने ग्रंथ में समझाया है कि जो असुरों का वध हुआ है, अगर हम ये कथा ध्यान से सुने तो हमारे हृदय में जो मैल है, अलग अलग प्रकार के भौतिक आकर्षण हैं, वो दूर हो जाएंगे। और भगवान कृष्ण ने तो अनेक असुरों का वध किया, बलराम जी ने केवल दो तीन असुरों का वध किया। जैसे एक धेनु का वो उनके भाई चालावन जंगल में आए थे और भगवान ने कई असुरों का वध किया। फिर बलराम जब जंगल में पहुँचे तो उनके मित्रों ने कहा था, यहाँ एक गधा है, किसी को अंदर आने नहीं देता, इस बगीचे में इतने अच्छे फूल हैं पर हमें अंदर आने नहीं देता, आप कृपा करके उनका वध करो। तो बलराम ने कहा, इसमें क्या कठिनाई, ये तो मैं आसानी से कर लूँगा। और बलराम ने गए जंगल में, पेड़ को हिलाया बड़े तेजी के साथ, और फल जब नीचे गिरे, इनको सूरज ने समझ लिया कोई अंदर आया है। और इनको सूरज ने क्या किया, उनके पाँव को पकड़ कर घुमा कर फेंक दिया पेड़ों पर। और जब इनके मित्रों ने देखा उनके मित्रों को वध हो गया है, तो फिर उन्होंने भी प्रयास किया भगवान को मारने के लिए, तो वह संभव था। भगवान बचपन से ही अपनी दिव्य लीला प्रकट करते हैं, जन्मा कर्म चा में दिव्य, मैं प्रकट होना और प्रकट होना दोनों ही दिव्य में। तो परम भगवान श्री कृष्ण ने अनेक दिव्य लीलाएं प्रस्तुत की और बलराम जी ने भी की। और एक और असुर था परम बसुर आया था जहाँ भगवान और उनके भाई सब खेल रहे थे। वो जो खेल रहे थे, ये खेल से आप लोग अभी भी बच्चे अभी भी करते हैं, दो बन गए थे घोड़े और उनके ऊपर बैठे थे, और जो हार गया उसको दूसरे को अपने पीठ पे उठाना पड़ता था। तो भगवान हार गए और परम असुरा उनके सामने की सेना में थे, तो परम असुरा ने बलराम जी को अपने पीठ में उठाया। उनका भाव ये था ऊपर जाके फेंक देंगे, तो ऊपर 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 उठाते गए। तो बलराम ने क्या किया, बलराम ने अपने शरीर को एक्सपेंड विस्तार करके इतने भारी बन गए कि रमसूरा को छोड़ना पड़ा, उनका उनकी मृत्यु हो गई। तो भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। जब आप पढ़ते हो कि जैसे बाल लीला में जब एक दिन भगवान घर आए थे तो माता ने कहा, तुमने क्या मिट्टी खाई है, हमारे घर में क्या किसी चीज़ की कमी है। नंद महाराज के पास 9 लाख गायें थी जो सजी हुई थी गहनों के साथ, तो पर बलराम चाहते थे कि वे माँ उनके भाई को डांटे। उन्होंने क्या सूचना दे दी कि आज आपके बेटे ने मिट्टी खाई है। और जब भगवान घर लौटे, माँ ने कहा मुंह खोलो, और मुंह खोलो देखा पूरे विश्व का दर्शन, पूरे ब्रह्मांड का। तो यशोदा माता सोचने लगी ये मेरा सपना है या असलियत है। पर अगर आप ये कथा किसी अज्ञान नहीं व्यक्ति भौतिक वाले को समझाओ, वो क्या कहेगा, ये तो कल्पना है, ये कैसे संभव हो सकता है। तो इसलिए भगवान की लीलाएं आप भगवत में पढ़ते हो तो कहाँ दसवें स्कंद में आकर, पहले नौ स्कंदों में नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक व्यक्ति दसवें स्कंद में पहुंचेगा, उसके हृदय में किसी प्रकार का गलत विचार नहीं होगा। ये स्वीकार कर सकता है कि परम भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। इसी श्रीमद् भगवत में आप पढ़ते हो कि परीक्षित महाराज ने कहा मैं व्रत रख रहा हूँ पानी से और खाने से, पर जब से मैं सुखदेव गोस्वामी के द्वार के कमल मुख से ये भगवतम का संदेश सुन रहा हूँ तो मेरी भूख भी चले गई और प्यास भी चले गई। आप गोवर्धन लीला में देखते हो कि जब ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत को उठा रहे थे, सब के सब भगवान के चेहरे को ध्यान से देख रहे थे, और उस समय के लिए ना उन्हें प्यास लगी ना भूख लगी। तो प्रभा जी दसवें स्कंद के लीला में कहते हैं अगर हम आध्यात्मिक विषय में रुचि लेंगे तो हमारा हृदय भी ऐसा बन जाएगा कि आप भौतिक भूख भौतिक प्यास से बचोगे। भौतिक भूख और भौतिक प्यास के कारण हम अनेक प्रकार के भौतिक कार्यों में जुड़ते हैं, और अगर आप इससे बचना चाहो क्या है उपाय, भक्ति योग। और जो व्यक्ति कृष्ण कथा सुने और सुनाए उसका सुनने वाले का भी लाभ है, सुनाने वाले का भी लाभ है, जो दूसरे व्यक्ति सुन रहे हैं उनका भी लाभ है। कृष्ण कथा में लाभ ही लाभ है। कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था, युद्ध होने से पहले बालराम ने कहा कि युद्ध नहीं होना चाहिए। उन्होंने बहुत प्रयास की कि युद्ध रुक जाए किसी प्रकार से, पर युद्ध ने धृतराष्ट्र ने किसी रूप में उनकी राय को स्वीकार नहीं किया। तो बालराम में छोड़कर बालराम क्या कर रहे गए, उन्होंने भारत के तीर्थ के स्थानों की यात्रा की, भारत के लगभग सारे तीर्थ के स्थानों की यात्रा की। यात्रा करते करते कहाँ पहुँच गए, नमेश्वरालय। नमेश्वरालय में उस समय संतों की सभा चल रही थी, हजारों संत उपस्थित थे, और उनका निर्णय ये था कि ये यज्ञ हजारों सालों के लिए चलेगा। और उन्होंने वहीं से सूतक खास बल दिए, आशीर्वाद दिया था उमाश्र सूतक को इस यज्ञ का निर्देशन करने के लिए। जब बालराम जी वहाँ पहुँचे, सारे संत महात्मा उठ गए, खड़े हो गए उन्हें आदर देने के लिए, पर एक संत नहीं उठा, वो थे रोमहर्षना सूता ने सोचा कि मैं क्यों उठूं, मैं आके व्यास साल में हूँ। पर बालराम जी को ये व्यवहार ठीक नहीं देखा। तो बालराम जी ने क्या किया, एक घास से कुछ जगह छुआ उनको और उनकी क्या हो गई, क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उनको A47 की जरूरत नहीं थी, एक घास को लगाया और मृत्यु। फिर मृत्यु हुई, सब भक्तों का आह क्या हो गया, हमने खास वर दिया था रोमहर्षण सूत्र को कि वो हजारों साल के लिए जिएगा और मार्गदर्शन देगा, और अब हमारा यज्ञ सफल नहीं होगा। सफल कैसे, तो भगवान ने कहा अगर तुम्हें लगता है कि वहाँ पर जीवित बना देना चाहिए तो मैं बना देता हूँ, मेरे क्या संभव है जो बोलो मैं कर सकता हूँ। संत ने कहा नहीं, आपकी इच्छा थी कि इस व्यक्ति का वध होए क्योंकि उसने आपका आदर नहीं दिया, तो हम उसका विरोध भी नहीं करना चाहते, तो पर हम करें क्या, भी ये यज्ञ जो हम कर रहे हैं इसकी आयु हजारों साल है, अब लीडर के बिना हम कैसे करें। तो भगवान ने कहा नो प्रॉब्लम, भगवान के लिए कोई प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम। भगवान ने उनके बेटे को चुना, वो कहा बेटा बाप का प्रतिनिधि माना जाता है, तो भगवान ने वही जिम्मेदारी सौंप दी उनके बेटे को, और जो संत महात्मा थे बड़े प्रसन्न हुए। तो संतों ने बालराम जी ने कहा और अटोनमेंट मुझे कुछ करना चाहिए, और सजा देना चाहते हो दे दो, और क्या सजा मुझे भुगतनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ये जो पड़ोस का जंगल है उस जंगल में एक सूर भाव का व्यक्ति है, जब हम यज्ञ करने जाते हैं ऊपर से आकर मल पेशाब करते था, तो हम ना यज्ञ कर पाते हैं ना उस पेड़ों का फल। लगता है उन दिनों में अनेक पेड़ थे और बड़ा मीठा फल, पर हर वन में लगता है कोई असुर था। भगवान ने कहा, वो भक्त ने कहा रात इस आपके अलावा कोई भी इस असुर का वध नहीं कर सकता। भगवान ने कहा दिस इज नो प्रॉब्लम, एक असुर को ठीक करना है। भगवान गए जोर से पेड़ को हिलाया, जो पेड़ को जो हिलाया वो असुर समझ गया क्या ये है, कौन है वहाँ देख रहे, कौन है कौन है कौन है, तो कौन है जो ये पेड़ को हिला रहा है, किसकी हिम्मत पड़ी है मेरे बगीचे में, मेरे से पूछे बिगा अंदर आ गया। तो उन्होंने जब बालराम को देखा तो बालराम को पीछे से आकर लात मारी बहुत जोर से, बालराम ने पकड़ कर पैरों से घुमा कर क्या किया, इतनी जोर से फेंका जो पेड़ों में गिरे और मर गया। जब संतों ने देखा, राजा ने कि बालराम ने अपनी शक्ति से उस असुर का वध कर दिया है, अब वो उस जंगल में जा पाएंगे और फल वहाँ का खा सकेंगे, वो बड़े प्रसन्न हुए। सब संतों ने क्या किया, बालराम को आशीर्वाद दिया। तो जब बालराम जी तीर्थ के स्थानों की यात्रा कर रहे थे, उन्हें ये भी सूचना मिली कि कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया है और अनेक जो क्षत्रिय थे सबका सबकी मृत्यु हो गई है, इस युद्ध में। तो बालराम ने सोचा चलो जाके मैं देखता हूँ कुरुक्षेत्र में युद्ध की स्थिति। बालराम ने कहा मैं चलता हूँ देखने के लिए क्या है स्थिति। तो बालराम जी उस युद्ध के मैदान में पहुँच गए। यहाँ की दुर्योधन और भीमसेन अपने गधे से युद्ध कर रहे थे। दुर्योधन ने इस कला को सीखा था किससे? बालराम से। पर फिजिक ताकत ज्यादा भीमसेन के पास थी। वो बालराम जी को पता था किसी का विजय नहीं होगा। बालराम जी पहुंचे वहाँ उस स्थान में जहाँ दुर्योधन और भीमसेन अपने गधे से क्लब से ये लड़ रहे थे। जब बालराम जी वहाँ पहुंचे युधिष्ठिर सादे नकुला घबरा गए। उन्हें लगा कि क्योंकि दुर्योधन बालराम के शिष्य थे उनसे इन्होंने कला की लड़ने की कला सीखी थी, शायद वो सोच रहे बालराम जी आए हैं उनका सहयोग करने के लिए। इसका दुर्योधन बोला। पर बालराम जी ने देखा, बालराम जी ने दोनों का तुम्हें से किसी की विजय नहीं होगी, लड़ना बंद करो। एक ज़्यादा तेज है कला में और दूसरा तेज है ताकत में, किसी की विजय नहीं होगी। पर बालराम ने देखा इतना जोश था इन दोनों में, उन्होंने बालराम की राय को स्वीकार नहीं किया। फिर बालराम जी छोड़ कर चले आगे। तो बालराम जी हम भगवान के बड़े भाई के रूप में, तो बालराम जी के एक ही भाव रहता है और वो क्या है? वो भाव ही रहता है भगवान की सेवा। और अगर हम कृष्ण बालराम की शरण लें तो हमारे भक्ति के मार्ग में जो कठिनाइयां हैं उनसे भी हम मुक्त हो सकते हैं। प्रभुपाद जी जब अमेरिका आए उन्होंने दसवें स्कंद का अनुवाद किया, क्योंकि प्रभुपाद जी ने जैसे कहा उन्हें पता नहीं था कब तक उनकी आयु रहेगी। तो प्रभुपाद जी ने दसवें स्कंद को सार रूप में प्रस्तुत किया है एक कृष्ण बुक के नाम पर। और प्रभुपाद चाहते थे कि ये ग्रंथ प्रकाशित हो जाए। उस समय प्रभुपाद नए आए थे अमेरिका और संस्था के पास धन नहीं था उस ग्रंथ को छापने के लिए। तो उन दिनों में हमारे प्रभुपाद जी ने अपने भक्तों को इंग्लैंड भेजा था प्रचार शुरू करने के लिए। जब वो प्रचार शुरू कर रहे थे तो उनका परिचय हुआ बीटल्स के साथ। आपने सुना है बीटल्स का नाम, खास करके एक बीटल जॉर्ज हैरिसन ऐसा भक्त बना था बना। तो प्रभुपाद जी को पता था ये श्याम सुंदर का कि नई दोस्ती है जॉर्ज हैरिसन बीटल के साथ। तो न्यूयॉर्क में श्याम सुंदर आए थे प्रभुपाद को मिलने। तो उन्होंने प्रभुपाद ने कहा श्याम सुंदर व्हाई डिड यू गो एंड आस्क जॉर्ज टू पे फॉर प्रिंटिंग दिस बुक। तुम जॉर्ज को पूछो वो छाप दे ये किताब, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये किताब बड़ी खूबसूरत रूप से छपे। श्याम सुंदर ने कहा प्रभुपाद जॉर्ज तो नया भक्त है, उससे मैं ऐसे मांगूंगा वो शायद भाग जाए, हमारी दोस्ती खराब हो जाएगी, पहले उसको भक्त बनने दो फिर हम मांगेंगे। पापा ने कहा नो जस्ट गो एंड आस्क। जब श्याम सुंदर ने देखा कि प्रभुपाद इतने डिटर्मिंड है उसे पूछने के लिए कि वो किताब छापने को तैयार है, तो जब श्याम सुंदर वापस इंग्लैंड आया तो उसने जॉर्ज को कहा माय गुरु टोल्ड मी टू आस्क यू कैन यू प्लीज प्रिंट दिस कृष्णा बुक It presents summary of the 10th canto. जॉर्ज ने कुछ पूछे बगैर कहा कितना खर्चा आएगा और एकदम चेक बनाया और किताब छपी. इसलिए अब एक कृष्णा बुक जो 10वें सन की सार है उसमें जॉर्ज हैरिसन का है एक पेज में उनका दस्तखत है. तो यही बालराम जी प्रकट हुए महाप्रभु के समय किस रूप में मुझे नंदा के रूप. तो भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं. और नित्यानंद जी के रूप में प्रकट हुए थे उनका भाव क्या था हमेशा महाप्रभु की सेवा. तो आज और बालराम को क्या बुलाते हैं लाऊ जी. एक कहानी मैंने सुनी है पता नहीं कितनी बोन पॉइल है. एक समय बालराम ने जो मोड़ है वो केवल भगवान कृष्ण अपने पगड़ी में लगाते हैं ना. तो बालराम ने कहा मुझे एक दिन के लिए कृष्णा बनने दो अपना पीकॉक पीकॉक जो है उसको मेरे सिर में लगाने दो. भगवान ने कहा नो प्रॉब्लम ये लो. और बालराम एक दिन के लिए कृष्णा जैसे दिखने लगे. तो कंस तो एक के बाद एक असुर को भेज रहा था भाइयों का वध करने के लिए. तो असुर चलने लगा था मथुरा के लिए. उसने पूछा कंस से मैं पहचानूंगा कैसे कौन है कृष्णा और मुझे भेज रहे उनके मारने के लिए. और कंस ने कहा एक ही व्यक्ति होगा जिसने वो पीकॉक को पैदा होगा तो पहचानना बहुत ईजी है. किसी जब असुर आया वृंदावन में उसे देखा कि बालराम ने वो मुकुट लगाया हुआ है उन्हें समझा ये कृष्णा है. तो बड़े जोर से पांव से मारा जिसके कारण बालराम जी ऊपर हवा में गए और फिर वापस आए. बालराम ने कहा ये बड़ा खराब अनुभव था और अपने आप मोड़ निकाल कर दे दिया वापस भगवान. तो बालराम जी के अनेक लीलाएँ हैं और हमें इनमें रुचि लेनी चाहिए. और रुचि लोगे तो बहुत एक प्यास और भूख से बच सकोगे. हाँ अभी महाराज आगे बढ़ेंगे. हरे कृष्ण. बालराम जी की लाऊ जी की और गौर प्रभु.